ये आकाशवाणी दिल्ली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास हरियाली बनाए रखने के लिए मियावाकी वृक्षारोपण की योजना बनाई। सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। नई दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया। दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 8,647 मेगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने राजधानी में 3 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास हरियाली बनाए रखने के लिए मियावाकी वृक्षारोपण की योजना बनाई है। इसके लिए दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास राष्ट्रीय राजमार्गों से सटी 53 एकड़ से अधिक भूमि को चिन्हित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि इस क्षेत्र में अगस्त के अंत तक वृक्षारोपण पूरा हो जाने की उम्मीद है। मियावाकी वृक्षारोपण एक जापानी पद्धति है जिसके जरिए कम समय में जैव विविधता वाले घने वन क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। ये जंगल वर्षा जल को भी संचित करने में कारगर होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोक अदालतें देश में न्यायिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं। इसमें कहा गया है कि वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सेवा और श्रम से संबंधित निपटान के तत्वों वाले मामले जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं को शीघ्र निपटान की सुविधा के लिए लिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में पेपर लीक और कदाचार का आरोप वाली याचिकाओं पर आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। एनटीए और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि परीक्षा के मामले में छोटी सी लापरवाही से निपटने की जरूरत है। न्यायालय ने यह भी कहा कि नीट देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक है और इसके लिए परीक्षार्थी जो कड़ी मेहनत करते हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि परीक्षा से संबंधित मुकदमे को लेकर गलत धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए बल्कि गलतियों को सुधारा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि वे नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के परिणाम पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने राजधानी के जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान राज्यसभा सांसद और आप नेता संजय सिंह ने नीट के परिणाम को रद्द करने की मांग की। इसके अतिरिक्त श्री सिंह ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए पर सवाल उठाते हुए कहा कि अन्य परीक्षाओं में भी पिछले 2-3 सालों में पेपर लीक की वजह से करीब 3 करोड़ छात्र परेशान हुए हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने भवाना से आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान उपकार के विरुद्ध पुलिस को एक शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। श्री चंदोलिया ने अपनी शिकायत में लिखा कि श्री उपकार ने कथित रूप से अपने कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ता और लोगों से बदसलूकी की है। इसके अलावा उन्होंने शिकायत पत्र में लिखा कि आपके विधायक ने लोगों को मारने की भी धमकी दी है। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की सदस्यता से आज अपना इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को त्यागपत्र सौंपकर श्री बिधूड़ी ने अपना पद रिक्त किया। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद भी त्याग दिया है। नियमानुसार लोकसभा में जीत के बाद सांसद को 14 दिन के अंदर विधानसभा या लोकसभा में से एक सीट से इस्तीफा देना होता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार पर एक नजर। फिर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास हरियाली बनाए रखने के लिए मियावाकी वृक्षारोपण की योजना बनाई। सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। नई दिल्ली में सेना की रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया। दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 8,647 मेगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने राजधानी में 3 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस बैंक के जरिए सैन्यकर्मियों और उनके परिवार वालों को गंभीर रूप से जलने या त्वचा से संबंधित बीमारियों के उपचार की सुविधा दी जाएगी। सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अरिंदम चटर्जी ने कहा कि यह सुविधा न केवल देखभाल की गुणवत्ता को बढ़ाएगी बल्कि गंभीर चोटों के उपचार को भी और अधिक प्रभावी बनाएगी। त्वचा बैंक में इलाज में इस्तेमाल होने वाले त्वचा ग्राफ्ट की संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था होगी। इसमें गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 8,647 मेगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। यह राष्ट्रीय राजधानी में अब तक की सबसे अधिक मांग है। डिस्कॉम अधिकारियों के अनुसार पिछले महीने की 22 तारीख को पहली बार दिल्ली की अधिकतम बिजली मांग 8,000 मेगावाट तक पहुंच गई। इसमें कहा गया है कि दिल्ली की बिजली की अधिकतम मांग तब से कई बार 8,000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर चुकी है। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड ने अपने अपने क्षेत्रों में बिजली की मांग को पूरा कर लिया है। विद्युत मंत्रालय गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय कर रहा है। मंत्रालय के अनुसार उत्तरी क्षेत्र में 89 मेगावाट की अब तक की सबसे अधिक मांग को कल पूरा किया गया। इसमें कहा गया कि बिजली आवश्यकता का 25-30% पड़ोसी राज्यों से आयात करके ये संभव हुआ। विद्युत मंत्रालय ने इस गर्मी के मौसम में 250 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक मांग को पूरा करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। इस अवधि के दौरान उत्पादन जारी रखने के लिए आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं। आंशिक और अधिक कटौती को कम करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी बिजली उत्पादक कंपनियों को पूरी क्षमता से उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए अपने संयंत्रों को ठीक रखने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त कोयला आधारित थर्मल स्टेशनों पर कोयले का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए कहा गया है। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में आज भी जल संकट बरकरार है। दक्षिणी दिल्ली के खानपुर, संगम विहार, महरोली, वसंत विहार, ओखला, वसंत कुंज और चाणक्यपुरी समेत कई इलाकों में जल संकट देखा जा रहा है। इसके अलावा जल संकट उत्तर पश्चिम दिल्ली के नरेला और रोहिणी, पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, मोतीनगर, पटेल नगर और छतरपुर, उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर और मुखर्जी नगर और पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी, कृष्णा नगर और शाहदरा में भी देखने को मिला। स्थिति से निपटने के लिए सरकार गीता कॉलोनी, वसंत विहार और ओखला समेत शहर के कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति कर रही है। आने वाले दिनों में पानी की कमी का असर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र पर भी पड़ने की संभावना है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार तिलक मार्ग और बंगाली मार्केट भूमिगत जलाशयों में आपूर्ति में कमी के कारण लुटियंस दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को आने वाले दिनों में कम पानी मिलेगा। मीडिया से बातचीत में एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया कि नगर पालिका परिषद ने समय समय पर उचित जल प्रबंधन सुनिश्चित करने को लेकर दिल्ली जल बोर्ड को पत्र लिखते आ रहे हैं। इसके अलावा एनडीएमसी उपाध्यक्ष ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार टैंकर माफिया और टेंडर माफिया पर रोकथाम लगाने पर असमर्थन दिखा रही है।
दिल्ली सरकार लगातार हमको पानी उस हिसाब से नहीं दे रही है। उनका एक ही कहना है कि उनको पानी पीछे से नहीं मिल रहा, और ये लगातार झूठ बोलने की जो उनकी आदत है, जिस तरह से कोर्ट के माध्यम से भी और जो मीटिंग्स हुई हैं बिटवीन दी यूपी गवर्नमेंट, वहां के जो अधिकारी हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, दिल्ली के अधिकारी हैं, उनको पानी पूरा मिल रहा है, और अगर थोड़ा बहुत कम होता भी है तो उनके पास अधिकार है कि वे यमुना से पानी को लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से टैंकर माफिया, टेंडर माफिया और भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ ने आज एक अंतर्राज्यीय चोरी के गिरोह का पर्दाफाश कर लाखों के हीरों के आभूषण जब्त किए। पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस गिरोह के दो आरोपियों को राजधानी के पुछ विहार सेक्टर 4 से गिरफ्तार किया है। पूछताछ और जांच के बाद पुलिस ने चोरी किए गए 23 हीरे के आभूषण बरामद किए। उन्होंने बताया कि ये चोरी आगरा में एक व्यापारी से की गई थी। ये गिरोह हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी लंबे समय से चोरियां करता आ रहा है। दक्षिणी दिल्ली जिले के पुलिस महानिदेशक अंकित चौहान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी और आभूषणों के बरामद होने के बारे में उन्होंने आगरा पुलिस को सूचित कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में 3 दिवसीय योग शिविर का आज शुभारंभ किया। सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक चलने वाले ये शिविर दिल्ली के नेहरू पार्क, तालकटोरा गार्डन और लोधी गार्डन में आयोजित किए जा रहे हैं। योग दिवस के विषय योग स्वयं और समाज के लिए को ध्यान में रखते हुए NDMC ने लोगों से स्वयं और समाज के लिए इन योग शिविरों में शामिल होने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायत प्रमुखों से योग और मोटे अनाज के बारे में जागरूकता फैलाकर समग्र स्वास्थ्य को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने ग्राम प्रधानों को लिखे पत्र में कहा है कि पंचायत परिसरों, स्कूलों, आंगनबाड़ियों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर योग आधारित कार्यक्रमों का आयोजन लोगों और विशेषकर युवाओं को स्थायी और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए ग्राम पंचायतों के सभी निवासियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री मोदी ने इस आयोजन को योग के वैश्विक प्रभाव और लोगों के जीवन पर इसके सकारात्मक असर का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वयं और समाज के लिए योग। इससे एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओब्रॉय ने आज घोषणा की कि आगामी मानसून को देखते हुए नगर निगम ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक प्रेस वार्ता के माध्यम से महापौर ओब्रॉय ने बताया कि पिछले एक महीने से MCD ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर एक कार्य योजना तैयार कर लागू कर दिया गया है, और इसके तहत मॉनसून के लिए दिल्ली नगर निगम ने 2 चरणों में तैयारियां की हैं। महापौर ने बताया कि पहला चरण मॉनसून के आने से पहले लिया गया है। इसके अंतर्गत 4 फीट तक के 92 से 93% तक सभी नालों की सफाई हो चुकी है। वहीं 4 फीट से गहरे 85% नालों की सफाई हो चुकी है। दूसरे चरण का काम मॉनसून आने के बाद किया जाएगा। राजधानी में आज भी कड़ी धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली NCR राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास हरियाली बनाए रखने के लिए मियावाकी वृक्षारोपण की योजना बनाई। सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। नई दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया। दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 8,647 मेगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने राजधानी में 3 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।